तो सोमवार की इस भगवत गीता क्लास में सबका स्वागत है। वैसे थोड़ा ये भगवत गीता का प्रवचन जो है बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, तो अगर तो शांति से बैठेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाहर खेल सकते हैं। चुपचाप बैठोगे? तुम तीनों से ही पूछ रहा हूँ भाई। ओके, तो आज कौन सा श्लोक होना है? आठवें का चौथा। तो आज कोई है जो पहली बार आया? ये तो आप सबका स्वागत है। तो मतलब बाकी लोग पिछली बार भी आए थे, मान सकता हूँ कि नहीं? तो पिछले बार क्या डिस्कस हुआ था? अच्छा, राधाष्टमी का, और उससे पिछली बार भगवत गीता का क्या डिस्कशन हुआ था? पिछला जो श्लोक लिया था जिसने भी, है जी, उसमें क्या बताया क्या था? भगवत गीता की बात कर, राधाष्टमी का तो चलो मान लिया, आठवें अध्याय का तीसरे श्लोक में कुछ तो बताया होगा किसी ने, है जी? परब्रह्म, परब्रह्म क्या है? ओके, क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। पर ब्रह्म तो जो है सो है, हम ब्रह्म में हैं, ये तो पक्का पता। हम पूरी तरह से ब्रह्म में हैं, क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं याद किसी को। तो मतलब घर जाके एक बार रिवाइज भी नहीं करते हैं, कि पढ़ते भी नहीं है क्या लिखा है श्लोक में। वैसे हम लोग पूरी भगवत गीता को ना पूरे अच्छे से फॉलो करते हैं, ये भगवत गीता भी लिखा है, भगवत गीता एज इट इज, तो घर जाके इसको एज इट इज रख देनी है। तो खोलनी भी नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में तो लिखा है एज इट इज। पर ब्रह्म क्या है? चंपक लता माता जी, एक्चुअली इसकी जो भूमिका है वो सातवें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बना रहे हैं, जब भगवान कहते हैं साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुरयुक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। और फिर उनका आगे प्रश्न है कि यज्ञ का स्वामी क्यों कौन है, जैसे भगवान ने कहा ना अधियज्ञ, तो अर्जुन पूछ रहे हैं अधियज्ञ कौन है, शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो इन प्रश्नों में अर्जुन पूछ रहे हैं कि अध्यात्म अधि आत्म, जैसे भगवान ने पिछले सातवें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोला, फिर अधिदैवम क्या है, और इस दूसरे श्लोक में पूछा कि अधियज्ञ क्या है। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, मुश्किल है समझना, नहीं? तो भगवान इस चौथे श्लोक से अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदेव, इन तीनों के बारे में बताएंगे कि क्या है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देह भृतां वरा अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देह भृतां वरा अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देह भृतां वरा। तो शब्दार्थ है अधिभूतम भौतिक जगत, क्षरः निरंतर परिवर्तनशील, भावः प्रकृति, पुरुषः सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, च तथा अधिदैवतम अधिदैव नामक अधियज्ञ परमात्मा, अहम मैं कृष्ण एव निश्चय ही अत्र इस देहे शरीर में, देह भूताम देहधारियों में, वर हे श्रेष्ठ हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है, और प्रत्येक देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं में निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, मतलब कुछ ओके, बच्चों को कोई बाहर ले आ सकता है? तो देहधारियों के भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, मेंटेन करते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, मतलब बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्षीण होते हैं, खत्म होने जाते हैं, और अंत में विलुप्त हो जाते हैं, मतलब एकदम से खत्म हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। वे किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। तो अधिभूत का मतलब भगवान बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति या भौतिक जगत में कोई भी चीज है, ये 6 अवस्थाओं से गुजरती है। पैदा होती है, बढ़ती है, कुछ समय तक रहती है, कुछ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, फिर खत्म होने लगती है और एकदम से फिर एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये हम अपने शरीर से भी देख सकते हैं, या भौतिक जगत में किसी भी चीज को ले लीजिए, हर चीज जो है इन 6 अवस्थाओं से गुजरे भी, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इस जगत में, सब टेम्परेरी है। फिर प्रभा जी लिख रहे हैं अधि देव के बारे में। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाती है। अधिदैव मतलब जो देवताओं को भी कंट्रोल करता है। तो परमेश्वर का जो विराट रूप है उसमें सारे देवी देवता, 11वें अध्याय में आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना विराट रूप जो है अर्जुन को दिखाया, और सारे देवी देवता उसमें सम्मिलित थे। और फिर प्रभा जी बता रहे हैं, प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। तो परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण का अंश। कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार का विस्तार है महाविष्णु। महाविष्णु के शरीर से सारे ब्रह्मांड जो है प्रकट होते हैं जब वो सांस छोड़ते हैं। महाविष्णु फिर हर ब्रह्मांड में अपने विस्तार करके प्रवेश करते हैं, उस ब्रह्मांड को के आधे भाग को अपने पसीने के जल से भर देते हैं, जिसको क्षीरोदक सागर कहते हैं। उसमें महाविष्णु लेटते हैं, जिनको फिर नाम पड़ता है गर्भोदक सागर बोलते हैं, और जिनका नाम पड़ता है गर्भोदक्षय विष्णु। और इन गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की रचना करते हैं जब उनको कृष्ण से ज्ञान मिलता है। और फिर सृष्टि में अभी संचालन नहीं होता क्योंकि अभी परमात्मा एंटर नहीं हुए हैं, तो गर्भोदक्षय विष्णु अपना फिर विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में, क्षीर सागर पर लेटते हैं। और फिर क्षीरोदक्षय विष्णु अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, हर जीव के हृदय में वो जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में बैठते हैं। और इसके भी आगे हर एटम में परमाणु, ब्रह्म संहिता में बताया गया अंडांतरस्थ परमाणु चे अंतरस्थम, कि हर एटम के अंदर भी वो प्रवेश करते हैं। और तब जो है इस सृष्टि में कुछ एक्टिविटी जो है शुरू होती, उसके बिना एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। आजकल साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना कि हमें लगता है कोई गॉड पार्टिकल है एटम के अंदर। तो ये गॉड पार्टिकल जो वो सोच रहे हैं कि है, क्योंकि अभी तक उनको एग्जैक्टली क्या है ये नहीं पता, वो परमात्मा ही, कि हर एटम में भगवान का अंश परमात्मा के रूप में है। पर ये चीज साइंटिस्ट लोग अपनी रिसर्च के माध्यम से समझना चाहते हैं। शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, सिंपल है, उसको मानने पर नहीं मानते, हम अपने ढंग से समझेंगे। और वो कहते हैं कि इस तरह वो जो उन्होंने यूरोप में एक इतना बड़ा सुपर कोलाइडर बनाया है, उससे एटम्स को टकराएंगे, उससे एनर्जी निकलेगी, उससे हम समझ लेंगे कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई। मतलब दो चीजों को टकराने से, दो एटम को टकराने से उनको ये समझ में आएगा कि सृष्टि किस तरह ऐसा संभव है क्या? दो चीजों को टकराने से हमें डिस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन कभी नहीं होती। पर वो लोग ये मानते हैं, समझ नहीं सकते शास्त्रों के आधार से कि महाविष्णु के शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में समा जाते हैं, और ब्रह्मांड में इस तरह सृष्टि की रचना होती है। श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्या महत्त्व क्या है, प्रधान क्या है, काल क्या है, तीन प्रकार के गुण क्या है, पृथ्वी के सारे अवयव जो हैं वो कैसे आते हैं, पूरा डिटेल में बताया गया। पर नहीं, वो कहते हैं ये जो है मिथोलॉजी है, काल्पनिक चीजें हैं। मतलब वो कहते हैं कि एक पहले बहुत बड़ा एक पदार्थ था उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी, और उससे जो है सारे ग्रह प्लैनेट्स प्रकट हुए और अपनी अपने ऑर्बिट्स में उसी स्पीड पे करोड़ों सालों से घूम रहे हैं। मगर ये काल्पनिक नहीं लगता, ये एकदम साइंटिफिक लगता है। और जो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है जिसमें पूरा डिटेल में सब कुछ बताया गया, किस तरह सृष्टि हुई, पहले क्या आया, फिर क्या आया, सब कुछ डिटेल में बताया, वो काल्पनिक है। ये है बुद्धि। और वही चीज हम भी पढ़ लेते हैं स्कूलों में, वही आंसर या रट्टाफिकेशन करके लिख के दे आते हैं, पास हो जाते हैं, कभी सोचते भी नहीं ये वाकई ऐसा हो सकता है क्या कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ी चीज, अरे पर पहले वो चीज कहां से आई, उसको वहां किसने रखा, वो नहीं बता सकते भाई, किसी ने तो रखा होगा। अब ये टेबल हम कहें कि किसी ने नहीं रखा, अपने आप आ गया, तो आप कहोगे तो पागल आदमी हो गया, किसी ने तो रखा होगा, किसी ने ये टेबल बनाया और किसी ने यहां पे रखा, पर नहीं, साइंटिस्ट लोग नहीं ऐसा मानेंगे। और विस्फोट हुआ, विस्फोट कैसे हुआ, किसने किया, और विस्फोट होने से ऐसी क्या कितनी संभावना है कि एक विस्फोट हुआ, इतने बड़े बड़े ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है, मतलब 14 मंडल बताए गए हैं, वो सारे प्रकट हो गए और अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपनी अपनी कक्षा में, वो उसी स्पीड पर करोड़ों साल से घूम रहे, कोई मान सकता है ये अपने आप हो गया, और किसी ने नहीं किया। ये हमारी कार क्या अपने आप चलती है क्या, घर से यहां पर आने के लिए कि किसी को चलाना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, हवा का टायर प्रेशर चेक करना पड़ता है, इंजन ठीक है कि नहीं उसको मेंटेन करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, लाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, करना पड़ता है ना। और इतना बड़ा ग्रह पृथ्वी जो है अपने आप घूम रही है, और ये कैसे प्रकट हुई, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ उससे प्रकट हो गई। मतलब ये उसी तरह कहने का है जैसे कोई कहे कि एक प्रिंटिंग प्रेस थी और उसमें एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ये भगवद गीता छपकर अपने आप आ गई, कोई मान सकता है ये चीज। पर ये जो है ये हमको सिखाया जाता है और हम भी सीख सके ये लिख के आ जाते हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते, ऐसा संभव ही नहीं है। और फिर वही लोग जो है जैसे ब्रिटिश जो थे जब वो इंडिया पर राज कर रहे थे तो उनका एक ही काम था कि किस तरह भारतीय या वैदिक शास्त्रों को नीचा दिखाया जाए, और उसमें काफी हद तक सफल हुए, काफी हद तक सफल हुए। और तभी वो आजकल किसी भी स्कूल में चले जाओ वो क्या बोलते हैं, ये हिंदू मिथोलॉजी में ऐसा लिखा गया। मिथोलॉजी मतलब क्या होता है, मिथोलॉजी शब्द है मिथ से, मिथ मतलब कल्पना, मतलब ये काल्पनिक चीजें हैं। इतना बड़ा ज्ञान भगवद गीता में दिया गया है, ये काल्पनिक चीज है, इन बच्चों को थोड़ा कोई बाहर नहीं छोड़ सकते। प्रभु जी थोड़ा देखो ना, मतलब भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग सबके बारे में बताया है, ये सब काल्पनिक चीजें हैं, संभव है क्या। पर यही चीज हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, मतलब राम, भगवान राम ने अपनी लीला की, भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, आज जो है वामन देव जी का अवतार हुआ, वामन देव ने अपनी लीला की, वो सब काल्पनिक है, पर बाइबल में जो लिखा है वो सच है। हम नहीं कहते उसमें झूठ लिखा है, बाइबल में जीसस क्राइस्ट हुए, मोसेस हुए, जो भी उनके बाकी संत लोग हुए, ठीक है हुए, पर जो गीता शास्त्र में लिखा है वो भी सच है। पर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसको ठीक से जानेंगे नहीं, कैसे इस चीज को बता पाएंगे किसी को कि सच है। और यही भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में ज्यादा अच्छे से बता रहे हैं कि यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। आदि देवता नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। मतलब भगवान का जो विराट रूप, भगवान ने जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में डिटेल में बताया गया है, तो विराट रूप क्या है? विराट रूप के माध्यम से भगवान दिखा रहे हैं कि 14 जो प्लैनेटरी सिस्टम्स बताए जाते हैं वो मेरे में ही स्थित है, सारे देवी देवता मेरे शरीर का ही अंग है, पर वो विराट रूप जो है ये एक भौतिक जगत में भौतिक शरीर है और टेम्परेरी है, ये भौतिक जगत के साथ खत्म हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में विराट रूप नहीं है। ये जैसे प्रभा जी बता रहे हैं उन नव दीक्षितों के लिए है, नियोफाइट जो शुरू में के लोग हैं जो भगवान के परमात्मा स्वरूप और फिर आगे चल के भगवान के परमेश्वर स्वरूप या भगवान स्वरूप को नहीं समझ सकते, उनके लिए विराट रूप। जैसे बताया जाता है ना शास्त्र में कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। हमारे लिए हमारी बुद्धि से हम सोचें किसी के पास बहुत ज्यादा शक्ति हो तो व्यक्ति कैसा होगा? बहुत लंबा चौड़ा होगा, खूब मसल्स होंगी, बॉडी बिल्डर होगा? नहीं, कोई छोटा सा बच्चा सर्वशक्तिमान हो सकता है कि उसमें बहुत शक्ति है? हम मान सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। पर भगवान जो भक्त हैं वो ये समझ सकते हैं कि भगवान किसी भी रूप में हो हमेशा सर्वशक्तिमान रहेंगे। जब कृष्ण जो प्रकट हुए तो 6 दिन के थे, उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का वध कर दिया, और राक्षसी कितनी बड़ी थी भागवत में बताया गया है, 12 मील लंबा उसका शरीर था। 12 मील मतलब करीब 19 किलोमीटर, और सुनने में लगता है तो काल्पनिक बात तो ऐसे तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, पर नहीं, अगर शास्त्रों में लिखा तो सच लिखा है राक्षसी, और जिसको कृष्ण ने जब 6 दिन के थे तब मारा था, और अपना शरीर का विस्तार भी नहीं किया था, उतने ही थे, 6 दिन के बालक थे, उन्होंने अपना शरीर नहीं बढ़ाया था। पर ये जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत के लोग हैं, जो भक्ति में आ रहे हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, वो इस चीज को रिलेट नहीं कर पाते। तो उनके लिए क्या है, भगवान ने विराट रूप दिखाया कि जो सर्वशक्तिमान है उसका शरीर भी विराट बहुत बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने विराट रूप दिखाया कि हमारा विराट रूप देखो, हम सर्वशक्तिमान है, तो पूरा शरीर जो है पूरे ब्रह्मांड में हमारा फैला हुआ है। पर जो भक्त हैं जिनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, भगवान से प्रेम है, वो समझ लेते हैं भगवान छोटे से भी हो तो भी भगवान है। जैसे आज जो है वामन देव की लीला हुई, भगवान वामन देव आज आए, उन्होंने प्रकट हुए, अपनी लीला की बलि महाराज के साथ, बलि महाराज के यज्ञ में गए और बलि महाराज ने उनको वायदा किया कि ठीक है मैं आपको कुछ दक्षिणा दूंगा, कुछ दान दूंगा। वामन देव ने कहा मेरे को बस 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज पहले तो बहुत हंसे कि वामन देव मतलब एक छोटा सा लड़के के रूप में गए थे, तो बलि महाराज पहले तो बहुत हंसे कि तुम छोटे से बालक हो, तुम्हारी बुद्धि भी इतनी है, मेरे से मांगते तो बहुत कुछ मांग सकते थे, तो मांगा भी क्या, 3 पग भूमि मांग ली। तो वामन देव ने कहा कि जो थोड़े से संतोष नहीं हो सकता वो बड़े से भी संतोष नहीं हो सकता, तो मेरे को आप इतना ही दो बस। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, पर जैसे ही कहा ठीक है तो वामन देव ने अपने शरीर का जो आकार जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, और शरीर का आकार इतना बढ़ा दिया कि 2 ही पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड जो है नाप दिया। बलि महाराज जो है पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन गए थे, हर जगह उन्होंने लड़ाइयां करके वो जगह जीत ली थी। ये हैं भगवान। पर उनके लिए क्या मुश्किल है, हम सोचते हैं बड़े आश्चर्य वाली बात है, महाविष्णु जिनके शरीर के रोमकूपों से मतलब शरीर के जो बाल जहां होते हैं वहां छेद होता है, वहां से जब सारे ब्रह्मांड प्रकट हो सकते हैं, तो उस ब्रह्मांड के अंदर वामन देव के रूप में एक ब्रह्मांड को नापना उनके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। वामन देव ने तो अपना शरीर बढ़ाया था तब ब्रह्मांड को नाप दिया, कृष्ण ने तो अपना शरीर नहीं बढ़ाया। और एक बार जब मिट्टी खाई तो यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल के दिखा, मिट्टी खाई है, मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह के अंदर दिखा दिया, और शरीर को बिल्कुल बढ़ाया भी नहीं था। ये कृष्ण है, और पूरा ब्रह्मांड दिखाया, और ब्रह्मांड के अंदर ये भी दिखा दिया कि यशोदा बैठी है और कृष्ण बैठे और यशोदा उस कृष्ण के मुंह में देख रही है ये कृष्ण है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या असंभव है। पर ये चीज है श्रद्धा की बात आती है कि वाकई हम में श्रद्धा है कि नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप भक्ति की बात करते हो, भक्ति तो मतलब ब्लाइंड फेथ होता है, पर ये हम नहीं समझते अगर ध्यान से देखें कि हमारा रोज की दिनचर्या में ब्लाइंड फेथ पे ही काम चलता है। अगर ध्यान से देखें पूरा का पूरा ब्लाइंड फेथ है। मान लो अभी कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाएगा, उसको दिखाया, अपना खून वून चेक कराया उससे, और कोई दवाई लिख के देता है। हम केमिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, क्या आपने वो दवाई में क्या सॉल्ट यूज हुए हैं वो पढ़ने की कोशिश की है कभी, या समझ सकते हैं हम क्या सॉल्ट हैं उसके अंदर? पीछे नित्य किशोर प्रभु बैठे हैं, उसे रिला रहे हैं क्योंकि वो दवाइयों का बिजनेस करते हैं हमें तो कुछ पता नहीं उस टैबलेट में क्या है, फेथ है कि नहीं, हम वो टैबलेट खा लेते हैं जैसे जैसे डॉक्टर बोलता है, दिन में 3 बार लो या 2 बार लो, पानी के साथ लो, दूध के साथ लो, हम भी खा लेते हैं। है कि फेथ है कि नहीं डॉक्टर पे और केमिस्ट पे? दिल्ली से मुंबई जाना है, फ्लाइट की टिकट ली, टिकट दिखाते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं, वो बताती है कि यहाँ बैठो, इस सीट पे बैठो, एयर होस्टेस वहां बैठ जाते हैं और फिर 2 घंटे बाद मुंबई पहुंच के उतर के अपने काम करने लगते हैं। फ्लाइट में जाने से पहले क्या हम ये चेक करते हैं, पायलट भाई अपना लाइसेंस दिखाते, प्लेन उड़ाना आता भी है कि नहीं, मुझे क्या पता सारे गेजेस दिखाओ, सारे मीटर चेक कराओ, सब ठीक ठाक भी है कि नहीं, पेट्रोल भरा कि नहीं भरा, कुछ पूछता है क्या है? फेथ नहीं है तो क्या है? और सीधा जाके अपनी सीट पे बैठे और उड़ के पहुंच गए मुंबई, फिर उसे पूछता है भाई तेरे पास मैप भी है कि नहीं, तू क्या पता हमें मुंबई की बजाय कलकत्ता ले जाए ट्रेन में जाते हैं, टिकट लेते हैं, अपने स्लीपर ढूंढते हैं, उसमें सो जाते हैं, जहां स्टेशन आना वहां पे उतर जाते हैं, उसमें पूछते हैं क्या? अरे इसमें ब्रेक तो चेक करो, ब्रेक ब्रेक है कि नहीं, कुछ सारा पानी तेल सब भरा है कि नहीं भरा, सारे पहिए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कोई नहीं पूछता। पर जब भक्ति की बात आती है, भगवान पे विश्वास करने की बात आती है, तो हम प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है, वो कैसे हो सकता है। भौतिक जगत में पूरे कार्य फेथ पे होते हैं, पैसा डालते हैं बैंक अकाउंट में, हमें पैसा दिखता नहीं, पासबुक में वो एंट्री होती है, नंबर लिखे होते हैं, पर हमारा पूरा विश्वास है ये बैंक जो है जब हम जाएंगे पैसा हमारा दे देगा। है कुछ नहीं, एक पासबुक है जिसमें कुछ नंबर लिखे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सरकार पे भरोसा है या बैंक वालों पे भरोसा है कि दे देंगे मेरा पैसा मेरे को। फेथ नहीं है तो और क्या है, फेथ ही तो है। पर वही फेथ हम कहते हैं भगवान पे करो, नहीं उन पे कैसे कर सकते हैं? कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, किसी को ऑपरेशन की जरूरत है, सर्जरी के लिए जाना है, कहीं भी जाएं, एम्स में, गंगाराम में, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर को पैसा भी देते हैं और उसके सामने लेट भी जाते हैं सर्जरी टेबल पे, ऑपरेशन टेबल पे, क्या मुझे काटो पीटो जो भी करो अब तुम्हारे ऊपर है पूरा फेथ है, पूरा शरीर को काट पीट के अंदर जो भी करते हैं, तो सर्जन्स का काम है, तो फेथ है कि नहीं कि मारेगा नहीं? और उससे पहले डॉक्टर लोग पहले साइन भी करवा लेते हैं, राइट, डिस्क्लेमर फॉर्म पे, कि कुछ गड़बड़ हो भी गया तो तुम सू नहीं करोगे कोर्ट केस नहीं करोगे, वो फिर भी फेथ है। और यहां भगवान कुछ साइन नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं करा रहे, सिर्फ श्रद्धा पूर्वक मेरे पे आ जाओ, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापे भी मोक्षयामि मा शुचा। पर उस बात पे हम क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि नहीं ऐसा कैसे संभव है। और जहां भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतन तो माम ये जन परिपा, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरे भजन करता है, उसके जीवन में जो कमी है मैं पूरी करता हूं, जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं, मैं खुद करता हूं, वो श्रद्धा नहीं है। LIC पे श्रद्धा है, जब हम प्रीमियम देते रहते हैं देते रहते हैं देते रहते हैं, वो जब ये कहते हैं लिख देते हैं योग क्षेम वहाम्य हम, उस पर श्रद्धा है कि जब हम मर जाएंगे तुम्हारे बीवी बच्चों को पैसा मिल जाएगा, मरने के बाद क्या देगा किसने देखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा तो उस पे श्रद्धा है उसमें प्रीमियम भी देना है, अपना पैसा ही देना है, जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनमें उनको इंटरेस्ट आता है, उसके बाद जो है हमारे ही पैसा हमें वापस कर देते हैं। पर यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेरी भक्ति कर लो और कुछ नहीं करना, पर नहीं उस पे श्रद्धा नहीं, वहां फेथ नहीं है कि हो सकता है भगवान बहुत बिजी है, इतने ब्रह्मांडों को देखना, इतने ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, इतने ग्रह में इतने सारे भक्त हैं, हमें कहां से देख पाएंगे, हो सकता है मिस कर जाएं यही तो भगवान बता रहे हैं, आदिभूत आदिदेव आदियज्ञ सब मैं हूं, परमात्मा के रूप में मैं हर एक के हृदय में स्थित हूं, मैं वो जो वो व्यक्ति वो जीवात्मा जितने कार्य कर रहा है वो सब मैं देख रहा हूं। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये श्रद्धा, जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहली चीज श्रद्धा चाहिए, और फिर श्रद्धा, फिर साधु संग, भक्तों का संग करेंगे, फिर भजन क्रिया, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जैसा बता रहे हैं कैसे भजन करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, मतलब हमारे हृदय में जो कमियां हैं, जो खराबियां हैं वो खत्म होंगी, फिर निष्ठा, निष्ठा मतलब पक्की श्रद्धा, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो रुचि आएगी, आसक्ति होगी, भाव प्रेम ये सब होगा, पर शुरुआत होती है श्रद्धा से। ये श्रद्धा हमें विकसित करनी है। श्रद्धा विकसित करेंगे कैसे? जब भक्तों का संग करेंगे, नहीं तो नहीं हो सकती। और भक्तों का संग दो तरीके से होता है, एक तो डिवोटी भक्त हैं जो भागवत हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, और दूसरा है पुस्तक भागवत, ग्रंथों का संग। ये जब पढ़ेंगे नहीं श्रद्धा नहीं आएगी। इसको भी नित्यम भागवत सेवा बताया गया, रोज इस पढ़ना चाहिए, आधा पौन घंटा एक घंटा जितना भी निकाल सके डेली पढ़ना चाहिए। बाकी चीजों में बहुत टाइम लगाते हैं, टीवी देखने में टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर की बातें करने में, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या हो रहा है, और इस देश में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा दूसरे व्यक्ति से कि आपके घर में तो मतलब आप मियाँ पति पत्नी में तो कोई लड़ाई हमने कभी देखी नहीं होती हुई, तो क्या कारण है, इसका रहस्य क्या है? तो पति ने बताया इसका रहस्य बहुत सिंपल है कि जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, इश्यूज हैं, उसका डिसीजन जो है मैं लेता हूँ, छोटे छोटे जो इश्यूज हैं वो मेरी पत्नी डिसाइड करती है। ये तो बड़ा अच्छा भाई चीज बताई है। तो बोले और थोड़ा डिटेल में बताओ ना, क्या क्या मतलब क्या है इसका? तो पति बोले कि बड़े बड़े इश्यूज जैसे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या अमेरिका को सीरिया पे आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगला क्रिकेट कैप्टन कौन होना चाहिए, क्रिकेट की टीम में कौन कौन होना चाहिए, ये सब मैं देखता हूँ। तो आपकी पत्नी का घर में और क्या क्या है, जैसे क्या सामान आना है, घर कहाँ लेना है, कार कौन सी लेना, ये छोटे छोटे इश्यूज वो देखती रहती तो, मतलब जिन इश्यूज का हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें इतना अपना समय निकाल देते हैं। और क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन बने और क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी आए ना आए, उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला? इंडिया की क्रिकेट टीम या तो जीतेगी या हारेगी, दो ही चीजें हो सकती हैं, या टाई हो जाएगा गेम, वो टाई होना थोड़ा कम संभावना है, या जीतेगी या हारेगी, क्या हो जाएगा उससे? टाइम हमारा खराब, कॉन्शियसनेस हमारी खराब होगी। पिक्चरों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चरों में एक्टिंग कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं, पर हमारा समय सारा खराब है। तो नहीं, उसने उसको ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, क्या फर्क पड़ना है? पर ये सब बातें समझ में आती है अगर हम साधुओं का संग करेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन है बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत ही रेयर है, दुर्लभ मानुषम जन्म, उसको हम इन चीजों में व्यर्थ करवाते हैं। भगवान के बारे में जानने की कोशिश ना करें, अपने बारे में जानने की कोशिश ना करें, भक्ति ना करें, क्या फायदा होगा? श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि आयुर हरती वे पुनसाम उद्यन अस्तम चयनसो, हर व्यक्ति की आयु जो है हर ली जा रही है, कम होती जा रही है, कैसे? सूर्य के उगने और डूबने के साथ साथ हर किसी की आयु जो है एक एक दिन करके, एक एक घंटा करके, एक एक मिनट करके, एक एक क्षण करके कम होती जा रही है। तो अब जितनी वेस्ट हो गई सो हो गई, अब जो है हम इसको सही यूटिलाइज करें, अब इसको वेस्ट ना होने दें। तस यर्ते यत क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तिया, एक्सेप्ट उनके जो उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक मतलब कृष्ण के कथा, कृष्ण के चरित्र का गान करने में लगे हुए हैं, कृष्ण का नाम लेने में लगे हैं, एक्सेप्ट उन लोगों के, नहीं तो बाकी सबकी उम्र जो है खत्म होती जा रही है, हल्के 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 हल्के, जैसे वो आवर ग्लास होता है ना, जैसे रेत गिरती रहती है, उसी इस तरह हमारी रेत के कण भी, हमारी जिंदगी के कण भी एक एक करके गिरते जा रहे हैं, और किस दिन आखिरी कण निकल जाएगा पता नहीं, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया उसने शरीर तो छोड़ना है, ये तो पक्की बात है। पर प्रॉब्लम यह है, शरीर छोड़ेंगे तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा, किस योनि में, किस देश में, कुछ नहीं पता। तो जब इस देश में, इस मनुष्य योनि में जन्म मिला है, भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, और ये समझते कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, किसी भी रूप में हो, अधिदेव भी वही है, अधिभूत भी वही है, अधियज्ञ भी वही है, पूरी तरह से कंट्रोलर है। इसके लिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। परम ईश्वर मतलब जो पूरी तरह से कंट्रोलर है, हर चीज को कंट्रोल करते हैं, कोई भी चीज उनसे छुपी नहीं है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी थॉट उनसे छुपा नहीं है। इस बारे में एक थोड़ी रोचक घटना है। इस्कॉन में एक बहुत बड़े वरिष्ठ सन्यासी हुए, तो पहले वो सन्यासी नहीं थे, जब ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था तमाल कृष्ण दास। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनके साथ लॉस एंजलिस के मंदिर में एक कमरे में बैठे थे। तमाल कृष्ण महाराज जो थे वो काफी बड़े प्रचारक हैं, हुए बहुत बड़े लीडर हुए इस्कॉन में। तो उस समय भी उनकी काफी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनकी कई बसें, कई भक्त जो है उनके साथ थे, उनको लीड करते थे। तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने अपने कमरे में बुलाया और प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे कि सृष्टि की रचना क्या होती है, कि सबसे ऊपर जो है आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन में कृष्ण है, कृष्ण के पहले विस्तार होते हैं बलराम जी, बलराम जी से फिर विस्तार होते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव, संकर्षण से विस्तार लेते हैं फिर नारायण, नारायण के अलग प्रकार हैं जैसे राम है, नरसिंह देव, वामन देव, वराह देव, और फिर नारायण से फिर विस्तार होता है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव का। इन दूसरे संकर्षण से फिर विस्तार होते हैं महाविष्णु, महाविष्णु जो कारण ओशन, कारण सागर पे लेटते हैं, और उनके शरीर से असंख्य कोटि ब्रह्मांड जो है, भौतिक ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं। हर ब्रह्मांड में वो अपना विस्तार करके प्रवेश करते हैं, उस ब्रह्मांड को आधे आधे ब्रह्मांड को अपने पसीने के जल से भर देते हैं, गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में उस जल पर लेटते हैं, और उनकी कमल नाभि से कमल प्रकट होता है जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी फिर 14 जो ग्रह हैं उनकी सृष्टि करते हैं। तो प्रभुपाद जी उनको समझा रहे कि इन 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स मतलब ग्रह मंडल, तो पृथ्वी भी पृथ्वी भूमंडल का एक ग्रह है पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर वैसे तो असंख्य ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी जो है असंख्य ग्रहों में से एक ग्रह है। इस ग्रह पर पृथ्वी पर कितने ही देश हैं, उसमें से एक देश है अमेरिका। अमेरिका में इतने सारे शहर हैं, उसमें से एक शहर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में हजारों सड़कें हैं जिसमें ये एक सड़क है जिसपे हमारा मंदिर है। इस सड़क पर भी कई घर हैं, 100-200 घर होंगे, और उसमें से एक घर या एक जो बिल्डिंग है जिसमें हमारा मंदिर है। इस बिल्डिंग में भी कई कमरे हैं, 10-15 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में इस समय मैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मैं और तमाल कृष्ण दास हम दोनों बैठे हैं, और इस कमरे में बैठ के तमाल कृष्णदास ये सोचता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूं। तो तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि मतलब मेरी स्थिति उस समय वो थी जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाती है। यही चीज हमें अपने जीवन से समझनी चाहिए, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हम सोचने को तो सोचते हैं हम बहुत बड़े कंट्रोलर हैं, बिजनेस जो है मैं चला रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा ये बिजनेस नहीं चलेगा, या प्रधानमंत्री वो सोचता है मैं नहीं रहूंगा देश नहीं चलेगा, ये देश उनसे पहले भी था बाद में भी रहेगा। हम कुछ कंट्रोल नहीं करते, सब कंट्रोल भगवान से ही होता है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना शरीर तक कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम अपने शरीर को ऑर्डर दे सकते हैं कि बूढ़ा होना बंद करो, तुम बूढ़े नहीं होगे। चाहे हम बालों में कितनी भी मेहंदी लगा लें, डाई लगा लें, कितना मर्जी मेकअप कर लें चेहरे पर, कितनी मर्जी ताकत वाली दवाइयां खा लें, हम बूढ़े होने से बच सकते हैं क्या? नहीं हो सकता, बूढ़े तो होना ही है। तो क्या कंट्रोल है हमारे शरीर पर? क्या शरीर को ऑर्डर दे सकते हैं कल से बीमार नहीं होना? 4 रोटी की भूख है, अगर 8 रोटी खा लें तो पता चल जाएगा कितने बड़े कंट्रोलर है। सुबह तक पता चल जाएगा। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। सोचने को सोच लेते हैं बहुत बड़े कंट्रोलर है। तो हमारा काम, जीव का काम एक ही है, किसी तरह हम कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में जुड़े, कृष्ण को पूरा सम्मान देते हुए कि असली कंट्रोलर वही है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करना है और कुछ भी नहीं। असली कंट्रोलर, असली रक्षक वही है। जब इस स्थिति में आएंगे तब हम भक्ति कर पाएंगे। तो मेरा टाइम हो रहा है तो ये तात्पर्य पूरा पढ़ लेते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते हैं। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे इस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो भगवान के स्वरूप में थोड़ा डाउट रखते हैं कि इतना छोटा सा व्यक्ति सर्वशक्तिमान भगवान कैसे हो सकता है। और इसी के लिए आगे फिर आगे चल के भगवान बताते हैं कि मैं जब मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तो लोग जो हैं, जो मूढ़ लोग हैं जिनकी बुद्धि कम है, वो मेरे को नहीं समझ पाते, पर जो भक्त हैं वो हमेशा समझ लेते हैं कि भगवान। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है कर सकता है। तो बताया जाता है कि दो प्रकार की ऑडियंस होती है जिसके प्रश्न नहीं होते, या तो सब कुछ समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं आया। हाँ जी प्रभु जी।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान में मैं विराजमान हूँ, वो क्या सच्चाई है और क्या गलत करते हैं वो सब मैं देखता हूँ। तो जब इंसान गलत काम करते हैं तो उसके कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं?
क्योंकि ये जीव जो है भगवान का अंश है। भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो जीव में भी थोड़ी स्वतंत्रता है। तो जीव की स्वतंत्रता है वो क्या इच्छा कर सकता है, और जब उसकी इच्छा बहुत बलवती हो जाती है, स्ट्रांग डिजायर होती है, तो भगवान कहते हैं ठीक है करो और फिर भुगतोगे, मना नहीं कर सकते। जिस तरह मान लो कोई दुकानदार है, वो रात को अपनी दुकान पे ताला लगाता है बंद कर समय और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मेरी दुकान में चोरी ना हो, पर दुकान के सामने ही एक चोर बैठा है, वो भी प्रार्थना कर रहा है भगवान आज इसकी दुकान का ताला तोड़ने का मौका दे देना। तो किसी एक की तो प्रार्थना पूरी करनी है भगवान ने। किसकी करेंगे, आपको क्या लगता है किसकी करेंगे, दुकानदार की या चोर की? जिसकी डिजायर ज्यादा स्ट्रांग है, डिजायर और उसके बाद डिजर्व भी हो, बैंक बैलेंस भी तो हो उस इच्छा को पूरा करने का। मान लो हम डिजायर करते हैं कि हमारे पास मर्सिडीज हो और बैंक में बैलेंस है मारुति का, तो मारुति मिलेगी ना, मर्सिडीज थोड़ी मिल जाएगी। इच्छा तो कितनी भी हो अगर डिजर्व नहीं करते तो इच्छा भी पूरी नहीं होगी। तो भगवान ने जीव को ये छूट दे रखी है और फिर इसी डिजायर की वजह से फिर भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं, हम कार्य करते हैं फिर हम फंस जाते हैं कर्म में। तो भगवान इसलिए जबरदस्ती नहीं करते, भगवान चाहते हैं हम भक्तों के संग से ज्ञान प्राप्त करें कि हमें क्या डिजायर करनी चाहिए और क्या नहीं। फिर इच्छा जब ठीक हो जाएगी तो भगवान उसको और पूरा करेंगे। और एक इच्छा जो है भगवान ज्यादा जल्दी पूरा करते हैं अगर हमारे में भक्ति की इच्छा हो, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो जल्दी पूरा करते हैं। वो इच्छा होगी तो वो ज्यादा अच्छी इच्छा है। अगर भगवान मतलब सब गलत काम कहे तो रुकने चाहिए, तो फिर पूरे संसार में जो इतना गड़बड़ चल रहा है वो कैसे होता, नहीं हो सकता था। क्योंकि हमारी इच्छा है और हमारी इच्छा की वजह से हमें फिर कर्म फल मिलता है। हम कर्म करेंगे अच्छा या खराब जैसा भी, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि गलत इच्छा ना करें और गलत काम ना करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी
प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि जिसे माना जा रहा है कि सबसे भगवान जो हैं वही पृथ्वी पे आए और उनके द्वारा ये सारी रचना की गई है, सिर्फ ये प्रूफ इंडिया में ही क्यों मिलता है, पूरे विश्व में इसका कोई प्रूफ अभी है कि नहीं है? जो हर जगह जिसे यहाँ पे जन्म लिए इंडिया में, राम ने भी या जो भी जो हमारा पुराण बताता है तो उसके हिसाब से हम मानते हैं कि, और कहीं कहीं ये क्वेश्चन उठता भी है कि ये जो भी देवी देवता हैं अभी वो इंडिया में ही हैं, तो क्या इसका कोई प्रूफ है जो पूरे विश्व में पहले राम का राज था या इससे पहले भी जो
जहां तक प्रूफ की बात मांग रहे हैं, तो अगर इंडोनेशिया में जाएं वहां भी विष्णु के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, मलेशिया इन सब देशों में जाएं विष्णु के मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं। तो पहले जो है ऐसे बताया गया परीक्षित महाराज के समय तक, जब कलयुग की शुरुआत हुई, तो तब तक ये वैदिक धर्म जो था पूरे विश्व में था, जिसको भारत कहते हैं, जब भारत नाम आया था तो पूरे विश्व का नाम भारत था। परीक्षित महाराज के बाद कलयुग की शुरुआत हुई और उसके बाद मतलब वहां के जो राजा लोग थे जो परीक्षित महाराज को रिपोर्ट करते थे, उनको अपना हेड मानते थे, वो हल्के 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 अलग होने शुरू हो गए और इसलिए उन बाकी देशों में वैदिक सभ्यता खत्म होगी, सिर्फ इंडिया में ही रह गई। अगर आप जैसे इधर जाएं यूरोप में, ग्रीस में, तो वहां भी जो उनके उनके शास्त्रों के हिसाब से देवी देवता बताए गए हैं वो पूरी तरह से मिलते हैं जो वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं। पर अब वो लोग ये नहीं मानते कि हम लोग वैदिक शास्त्रों से आए हैं। हिंदू नहीं है, सनातन धर्म था। हाँ, सनातन धर्म था, पर वो हल्के हल्के खत्म हो गया। अब तो भारत में भी कहां रहा है, भारत में भी कहां है सनातन धर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म जिसको बोलते थे वो कहां है? नहीं है। वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं, नहीं? वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का काम क्या था कि जो बाकी तीनों वर्णों की सेवा करता है। ब्राह्मण जो शास्त्र पढ़ने में और पढ़ाने में बिजी रहते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं शास्त्रों के आधार पर, और वैश्य जो या कृषि खेती करते हैं, गौ रक्षा, गायों की रक्षा, गायों का पालन या वाणिज्य व्यापार करते हैं, तो ये वैश्य कहलाते हैं शास्त्रों के आधार पर, यानी भी कुछ भी व्यापार कर लिया। और शूद्र मतलब जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। पर आजकल अगर हम देखें तो आईटी इंडस्ट्री जिसका ज्यादा बोलबाला है, उसमें लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम एरिक्सन में काम करते हैं और हम आईबीएम में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति काम करते हैं इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर, वो किनकी सेवा करते हैं? या अमेरिकन्स की, या चाइनीज की, या यूरोपियंस की, जो कि वर्णाश्रम धर्म से एकदम अलग है, जिनको यवन या मलेच कहा जाता है। तो जो व्यक्ति इन लोगों की सेवा कर रहे हैं वो किस वर्ण में आए हैं? वो शूद्रों में तो नहीं आए, उनसे भी नीचे हो गए ना। हालांकि ठीक है पैसा थोड़ा मिल जाता है, पर तो इसलिए इस समय वर्णाश्रम धर्म एकदम खत्म हो चुका है। और इसीलिए कलयुग में, चूंकि सारे पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें भगवान के धाम जाने के लिए, भक्ति करने के लिए बहुत ही सरल उपाय, सरल सिस्टम दिया गया, क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सकते, फॉलो कर नहीं सकते। तो बड़ा सरल तरीका है, सिंपल है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। सिंपल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, इस महामंत्र का जप करें, उच्चारण करें, संकीर्तन करें, अपने आप को शुद्ध करें, भगवान के धाम जाएं। सिंपल, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।